ओम शांति। और क्या चाहिए, गीत सुनाना हम सबने, सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए। फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए कि चाहना बनी रहती है। तो इस संगमयोगी जीवन में आज बाबा ने कहना तुम्हें रूहानी नशा रहना चाहिए। स्वयं भगवान तुम्हारे सन्मुख बैठा है, तुम मिश्रित कुटुंब के हो, रूहानी नशा रहना चाहिए। जब जब हम ऐसी स्मृतियों में अपने मन को बिजी रखते हैं तो खुशी कायम रहती है, नहीं तो खुशी भी गायब हो जाती है, क्योंकि हमें स्मृति नहीं रहती हम कौन है। जब कंट्रास्ट करते हैं अपने इस ब्राह्मण लाइफ और जो पास्ट की लाइफ है, तो कितना जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। हमारी संपूर्ण दिनचर्या में कितना बदलाव आ गया, रहन सहन से लेकर, सोचने से लेकर, देखना, बोलना, खाना पीना, सबके संबंध संपर्क में आना, व्यवहार में आना, कितना बड़ा बदलाव हो गया। तो ऐसे ऐसे बाबा से अगर दिल की हम बातें करते रहें, तो हम निरंतर उसका जो प्यार है वो हमेशा हमारे पर बरसता रहे, ऐसा महसूस होता रहेगा। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा डबल लॉक लगाओ। कौन सा? याद और सेवा का। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो क्या होगा, माया जीत बन जाएगी। माया कहां से आती है? हमारे अंदर ही माया है, खुद ही हम माया को क्रिएट करते हैं। हमारे कमजोर संकल्प ही माया है, व्यर्थ संकल्पों की रचना ही माया है, या स्वयं की कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाना ही माया है। हमारे अपने पास्ट के पुराने संस्कार हैं, वो ही माया है। इसलिए याद और सेवा का डबल लॉक। अगर हमने लॉक नहीं लगाया, दरवाजा खुला रखा, तो अंदर कोई भी आ सकता है, धूल मिट्टी आ सकती है। इसी तरह से हमारी ये कर्मेंद्रियां हैं, इन्हें भी हमें अपना मित्र बनाना है, क्योंकि सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय केवल अभी है। और ये कर्मेंद्रियां हम आत्माओं की बिल्कुल नजदीक में है, सबसे ज्यादा सहयोग यही देती है। अगर दूसरे किसी व्यक्ति को बुलाएंगे वो हमारे से दूर है, लेकिन ये कर्मेंद्रियां सबसे नजदीक में है। ये भी जैसे आत्मा का एक परिवार है। जैसे परिवार का रचना होता है तो वो अपनी रचना का ध्यान रखता है पूरा, अपने बच्चों का पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य के लिए कई योजनाएं तैयार करता है। तो एक कर्मेंद्रिया भी हमारी रचना है। अब इन कर्मेंद्रियों को की पालना हम कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाबा ने हर कर्मेंद्रिय के लिए श्रीमती दी हुई है। आज था ना, बाप की श्रीमत पर चलते हुए राय लेते रहो तो क्या होगा, तो डैश मिलती रहेगी, क्या शक्ति मिलती रहेगी। तो राय लेना बड़ा जरूरी है। राय अर्थात जो बाबा की आज्ञाएं हैं, सावधानियां बाबा देते हैं, उनको दिन में अपने जीवनचर्या में अमल में लाएं, अपना पोता मेल बाबा को दें, तो निरंतर पल पल हमें स्वयं महसूस होता रहेगा कि वो हमारे साथ में है। तो इन कर्मेंद्रियों से हमको अच्छे अच्छे काम लेने हैं। हमारी जो यात्रा अनेक जन्मों के लिए वो रही बाहर की भाग दौड़ की तरफ, बाहर की तरफ भागते रहे, लेकिन अंदर में कितनी अव्यवस्था हो चुकी है, कितने हमारे संकल्प बिखर चुके हुए हैं। वो ही हमको तंग करते रहते हैं। अंदर में कई खंडहर बन गए हुए हैं। दुनिया तो हमारे अंदर में ही है, इसलिए संसार में भी क्या कहते हैं, भीतर जाओ भीतर जाओ भीतर जाओ, अपने अंदर को देखो। तो हमें आंतरिक अपने जगत को परिवर्तन करना है, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। हम जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, भीतर से अपने आप को नहीं देखेंगे कि मेरे अंदर में क्या क्या अभी भी कमी कमजोरियां हैं, कौन से ऐसे संस्कार हैं वो मुझे तड़फाते रहते हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे कमजोर कर देती हैं, कौन से ऐसे विचार हैं जो मुझे बाबा से दूर कर रहे हैं, उसे प्यार उसके प्यार की अनुभूति नहीं करने दे रहे हैं, या उसकी पढ़ाई के प्रति प्यार नहीं हो रहा है। जब हम सेल्फ जांच करेंगे, स्वयं की जांच करेंगे, तो वहीं से पुरुषार्थ की शुरुआत होगी, नहीं तो पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ेगी नहीं। मूल्य सुनेंगे, पढ़ेंगे, चलेंगे, योग करेंगे, लेकिन जो जीवन में एक तीव्र गति से बदलाव आना चाहिए उसकी महसूसता नहीं होगी। इसलिए स्वयं के ऊपर बहुत गहनता पूर्वक अपने ऊपर नजर रखने की जरूरत है। देखना है ये आंखें क्यों भटकती हैं। बाबा ने कहा तुम सारे जहान के नूर हो, सारे संसार के लिए रोशनी हो। जिन आंखों से हम भगवान को देखते हैं, जन्म जन्म से जिन आंखों ने भगवान को तलाशा, आंसू भी बहाए होंगे, कितने माथे टेके, तीर्थ यात्राएं किए, भक्ति पाठ पूजा किया, शास्त्र पढ़े, भजन कीर्तन किए, रात्रि जागरण किए, ये सारा करने के बाद जो फल हमको मिला, इतना उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, उसके बावजूद भी अगर हम अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात बाबा को हमने ठीक से समझा नहीं है, उसके ज्ञान का, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका महत्व नहीं जान पा रहे हैं। हमने अपने पुराने संस्कारों से ही प्यार करके रखा हुआ है, तो हमें स्वयं को गहनता से निरीक्षण करना है। इसलिए बाबा कहते एकांत में जाओ, एकांत में जाओ, अर्थात जब भी हम अकेले होते हैं, अकेले माना मन से अकेले, भले पास में सब बैठे हैं, जैसे योग में बैठे हैं, ये भी एक एकांत का सर्वोत्तम एकांत का स्थान है। उस एकांत के समय में भीतर में हम झांके, कौन कौन सी अभी भी मेरे अंदर वो ऐसी आदत है जो हमारे कदमों को पीछे खींच लेती है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्योंकि केवल अभी का समय है थोड़ा जमा करने का, और वो भी समय तो हम देख रहे हैं कितना तीव्र गति से जा रहा है। उस समय की गति के प्रमाण हमारा पुरुषार्थ किस गति से आगे जा रहा है। तो कदम कदम पर बाप की सावधानी तो मिलती है, बाबा की सावधानी तो मिलती है, लेकिन उन सावधानियों के मिलने के बावजूद भी हम कितना सावधान रहते हैं, साधारणता में तो नहीं चले जाते हम, और अधिकतर होता यही है, क्योंकि साधारण संकल्प भी बाबा कहते विकार है, एक कमजोरी है अपनी। वो साधारण संकल्प तो संसार में मनुष्य बहुत करते हैं, लेकिन हम असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, संसार को रोशनी देने के लिए हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो संकल्प कितने महान होने चाहिए, कितने ऊंचे होने चाहिए, कितने शुद्ध होने चाहिए, कितने शक्तिशाली होने चाहिए, कितने श्रेष्ठ होना चाहिए, कितनी उनमें ऊर्जा भरी देनी चाहिए, क्योंकि हमारा संपर्क किससे हुआ है, हमारा कनेक्शन किससे हुआ है, भगवान से हुआ कनेक्शन। तो भगवान के संकल्प कैसे हैं, वो साधारण संकल्प होते हैं कोई, वो कमजोर संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, नहीं, वो शक्तिशाली संकल्प हैं, विश्व कल्याण का के संकल्प हैं, उनमें शक्ति भरी हुई है। बाबा के बोल में एक एक बोल में कितना जैसे दिल को भेद देता है, उसमें कितनी शक्ति भरी है उसमें। जब तक उस ज्ञान को हम धारण नहीं करेंगे तो वो ज्ञान शक्ति का काम नहीं करेगा। इसलिए उसकी धारणा कैसे होगी, उसके लिए सबसे पहले चाहिए साइलेंस। साइलेंस एक ऐसी अवस्था है जिससे सारी शक्तियां हमें उसकी महसूसता होगी उन शक्तियों की। साइलेंस में रहने से हमें एक तो अपनी कमजोरियों का भी पता चलेगा, दूसरा साइलेंस का बल जमा होने से हम बाहर की व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। एक है मन का मौन, दूसरा है स्थूल मौन, दोनों भी अति आवश्यक हैं, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा हमारी मुख से चली जाती है, अनावश्यक बोल बोल रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। जैसे योग के बाद जाते हैं, अगर कोई रास्ते में मिलता है तो हम पूछते हैं आपने भोजन किया, अब ये सोचने की बात है जरूरत है हमको बोलने की, यहां है जरूरत, जरूरत नहीं है इसकी, अनावश्यक बोल है ये, इसमें ना पूछने वाले का कल्याण है ना जिससे पूछा जा रहा उसका कल्याण है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, बहुत साधारण संकल्प जिनमें हम अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपना अकल्याण कर रहे हैं, कितना समय चला जाता है। वो महसूसता कहां करेंगे हम, सेल्फ रियलाइजेशन कब करेंगे, कब महसूसता होगी, समय बहुत थोड़ा रह गया है, और उसी समय को हम व्यर्थ के बातों में, फालतू बातों में गवा देते हैं, कितना ही पड़ जाता, या फिर किसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, अच्छा आजकल आप क्या खाते हो, क्या पूछने की जरूरत है, आजकल आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है, यह भी पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान सबको इक्वल पढ़ा रहा है, करो वो, अगर पढ़ना ही है अनुभव सुनने तो दादियों के अनुभव पढ़ो, ब्रह्मा बाबा की जीवन गाथा वो अनुभव पढ़ो, यज्ञ इतिहास हमारे दिल में एक पुरुषार्थ करने के लिए एक तीव्र वेग उत्पन्न करता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं वर्तमान के भावने का, तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम ईश्वर के कुटुंब के हो, लेकिन नशा कहीं नाश की तरफ तो नहीं जा रहा है, हम ईश्वर के कुटुंब को किस दृष्टि से देख रहे हैं, दृष्टिकोण हमारा कितना ऊंचा होना चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण है कहां जा रहा है, कमी कमजोरियों में, ये ऐसे करता है वो ऐसे करता है, भरना हमको स्वयं भगवान के खजानों से चाहिए, लेकिन हम किससे, रावण के जो प्रॉपर्टी खजाने उसी से अपने आप को भर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी आदत को चेंज किया ही नहीं अभी तक, संस्कार परिवर्तन नहीं किए, इतना लंबा काल ब्राह्मण जीवन का बीता चला जा रहा है, अगर हम अभी भी उन संस्कारों को पकड़ के रखे हैं तो उनसे हमारे जैसा और से बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। आज इतना मूर्ख का बात कल की मुरली में था। तो स्वयं की गहनता पूर्वक जांच चाहिए, हमें स्वयं ना केवल स्वयं का कल्याण करना है बल्कि अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। तो साइलेंस में क्या होगा, जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी हमारा कनेक्शन होगा, टचिंग होने लगेगी। टचिंग ऐसा नहीं है कि बाबा किसी तरह टच करेगा, उसकी वाणी, उसके संकल्प अर्थात उसके मुरली, उसके महावा की बुद्धि में बैठने लगेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर से आकाशवाणी आएगी, मेरी जो मन दिल की बात है मुझे पहुंच गई है, ऐसे बाबा ऊपर से बोल रहा है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उसके वाक्य, उसकी वाणी वो हमारी बुद्धि में बैठती जाएगी, मन बुद्धि का शुद्धिकरण होता जाएगा, इस संसार से मन बुद्धि उपराम होती जाएगी, ऊपर हमारा कनेक्शन जैसे हम बैठेंगे तुरंत, क्योंकि ऊपर रस मिलेगा, वो इस संसार के रस तो हमने चख लिए बहुत, क्या हुआ, जीवन का सत्यानाश तो हुआ, जीवन दुखों से भर गया, कितनी परेशानियां, कितनी समस्याएं, कितने विघ्न आते रहते हैं, जब हम इसी संसार का चिंतन करते रहते हैं, इस देह का चिंतन, देह के संबंधियों का चिंतन, देह की दुनिया का चिंतन, देह के पदार्थों का चिंतन, तो सारी शक्ति हमारी नीची रहती है। जो अव्यक्त वाणी ऊपर से आती है, जो शब्द परम धाम से अवतरित हो रहे हैं, उन शब्दों को स्पर्श करने के लिए हमें उसकी महसूसता अनुभव करने के लिए साइलेंस में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि परम धाम का वातावरण कैसा है, वहां कोई शोर शराबा है, कोई आवाज है, कोई कोलाहल है, साइलेंस है एकदम। तो उस साइलेंस में जाने के लिए अपने मन को साइलेंस करना है, मुख के साइलेंस के साथ साथ मन का साइलेंस, अर्थात ऐसा नहीं मन में विचार नहीं आएंगे, विचार अर्थात जो ऊपर से जो मौन की दुनिया से जो विचार अवतरित हो रहे हैं उन विचारों को अपनी बुद्धि में बिठाना है, तब मन उस दुनिया की ओर आकर्षित होगा। दो दोस्त हैं, अगर आपस में एक दो का प्यार कैसे प्रगाढ़ होता है, कैसे पक्का होता है, जितना उसमें आपस में वो ज्यादा व्यतीत करते हैं, बातचीत करते हैं, तब उनके संस्कार भी मिलने शुरू हो जाते हैं, एक दो की बातें मानने लगते हैं। उसी तरह से शिव बाबा हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त है, अगर उसकी हमको महसूसता करनी है तो ज्यादा उसमें हमको उसके साथ व्यतीत करना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, उसकी बातों को अमल में लाना पड़ेगा, वो जो वहां रहता है उसके साथ में रहना पड़ेगा, तभी तो वो प्यार करेगा ना। और हम मैं उसको छोड़कर इसी संसार में रह रहे हैं, इसी संसार के जाल में विचरण करते जा रहे हैं, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, क्या करना इसे, कोई क्या कर रहा है, सबका पार्ट अपना अपना है, जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है। बाबा ने कहा था ना मुरली में, तुम्हारा क्या जाता है, भगवान बैठा है ना सबके लिए, ऊपर वाला कर रहा है, जिसको जो करना है वो कर रहा है। अगर किसी को अकल्याण भी दिखता है, लेकिन बाबा ने कहा हर अकल्याण की बात के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण है, संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप कल्याणकारी है, तो अकल्याण हो ही नहीं सकता है। अगर हम सोचते हैं किसी के बारे में तो अर्थात हम अपना ही अकल्याण कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग का सुख तो इस संगम युग से सुख से बहुत फीका है वो वास्तव में, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं हम कर रहे हैं, उसकी केवल शब्दों तक ही वर्णन करते हैं, अपने मन बुद्धि को इसी संसार में उलझा के रखा हुआ है। और वो स्वीट साइलेंस वर्ल्ड है जो हमारा असली घर है, जहां हमको सुख शांति चैन मिलता है, जहां आत्मा एकदम आराम की अवस्था में चली जाएगी। ये सारा दिन हम सेवाएं करते हैं, भागदौड़ करते हैं, है ना, दिन में ऑफिस में जाते हैं, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन घर में आके कैसे इंसान को शांति चैन मिलता है। तो क्या हमारा ऐसे ही मन उस दुनिया की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, या केवल हम ऊपर से कह रहे हैं, जैसे आज भी वाहन है का तुम्हें कर्मातीत बनना है, कैसे याद में रहकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है याद में रहकर। तो साइलेंस बहुत आवश्यक है, जितना साइलेंस में रहेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली होगी, उतना हम उड़ान भरेंगे, सहज रूप से इन संसार की बातों से मुक्त होते जाएंगे। इसलिए साइलेंस में रहने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पॉइंट हैं जो हमको साइलेंस में स्वतः ले जाते हैं। वास्तव में साइलेंस हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है। जितना हम यज्ञ का लिटरेचर पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, एक है ऊपर ऊपर से पढ़ना, दूसरा उसको गहराई से पढ़ना। जैसे यज्ञ इतिहास है, ये जो हम फोटो देखते हैं, अब उसी कालखंड में चले जाओ, देखो कितना उसमें त्याग भरा हुआ है, कितना तपस्या भरी हुई है, कितना पुरुषार्थ किया, कितना इतना लंबा सफर किया। वो जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं 1936 हैदराबाद सिंध, देखो छोटे छोटे बच्चे उस अवस्था में जाके, उस अवस्था से लेकर अभी तक 2022 कितने ईयर हुए, 86, 86 साल की लंबी यात्रा में कितना बड़ा त्याग समाया होगा। क्या वो हमारे जीवन में त्याग है, क्या वो हमारे जीवन में तपस्या है, या हम दूसरों के लिए समस्या बनते जा रहे हैं, दृष्टि वृत्ति से बोल से समस्या बनते जा रहे हैं। याद तो बहुत सहज है, मुश्किल तो हम बना देते हैं। बाबा ने कहा याद तो कोई ना कोई तो रहता ही है, जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है उसको भी तो कोई ना कोई तो याद रहता ही है ना। हमें तो केवल दिशा चेंज करनी है मन की, बार बार पकड़ को मन लाना इधर। उस दिन था ना मुरली में, अगर मुरली में मन ना लगे तो भी सुनो, योग में अगर मन बुद्धि भटके तो भी बैठो आके, अगर हम कदम रखेंगे नहीं तो मदद कैसे मिलेगी। वो तो मदद दे रहा ही है, वो तो शक्ति दे रहा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, बुलाओ बाबा आ जाओ और वो हाजिर है। जैसे एक बार छोटा बच्चा था तो मां बाप छोटे बच्चे के साथ जाते थे छुट्टियों में शहर से अपने घर में दादा दादी के पास, हर वर्ष जाते थे। तो बच्चा छोटा था, धीरे धीरे फिर बड़ा होता गया, हर साल ट्रेन में जाते थे, ट्रेन से आते थे। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो कहता, पिताजी अब मैं जा सकता हूं, अब मैं ट्रेन में अकेले चला जाऊंगा। तो पिताजी कहते, नहीं अभी नहीं, तुम और थोड़ा बड़ा हो जा तो जाना। तो बच्चा थोड़ा हट्टी था, जिद की उसने, नहीं कहता मैं चला जाऊंगा, मुझे सारा रास्ता पता है। तो पिताजी ने कहा, भले रास्ता पता है लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे अनुभव चाहिए। बच्चा नहीं माना, फिर पिताजी ने कहा, चलो, माँ बाप ने कहा ठीक है जाओ भले आप। तो माता पिता ने उसको तैयार करके रेलवे स्टेशन में जाके ट्रेन में बिठा दिया, डिब्बे में बिठा दिया और उसको समझा दिया सारा कि ऐसे ऐसे जाना, इधर इधर से जाना। और तो पिताजी बाहर खिड़की के पास खड़े और वो अंदर बैठा। फिर भी पिताजी ने एक चिट्ठी लिख के दी और डाल के उसको दे दिया, बोला जब भी तुमको डर लगे, मुश्किल हो कोई भी, तो इस चिट्ठी को निकाल के पढ़ लेना, इसके अंदर सब कुछ लिख दिया मैंने जो तुमको बताया। तो कहता, पिताजी कोई बात नहीं, पढ़ लूंगा, वैसे तो मुझे सारा पता ही है, ट्रेन रवाना होगी, बहुत सारे स्टेशन निकल गए, नए नए लोग आ रहे हैं, नए जा रहे हैं, अब मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि उसमें बिजी हो जाता हो। तो बहुत आगे पहुंचे तो एक बहुत बड़ा आदमी आया, उसकी शक्ल ऐसे कुरूप टाइप की, भयानक देखने में। तो वो देख के उसको डर गया, थोड़ा सा अंदर अंदर डरा। फिर ऐसे उसने कुछ बोला भी और डर पैदा हुआ। फिर उसको लगा पिताजी ने जो चिट्ठी दी है पढ़ता हूं। तो उसने निकाला तो उसमें लिखा था, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं। तो बाबा भी ऐसे ही है, बच्चे चिंता मत करो, मैं तुमको रोज लेटर लिख के देता हूं, चार पेज का लेटर राजा बाबा रोज देते ना हमको, उसमें सब समस्याओं का समाधान है, लेकिन उस चिट्ठी को पढ़ते नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ना, आह्वान करो, बुलाओ, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं आ जाऊंगा तुरंत। तो वो कोई ऐसे नहीं आएगा, वो चिट्ठी ही उसकी दी हुई है, उसमें सब समस्याओं का समाधान है। ऐसा नहीं है कि उसकी पढ़ाई तो हमने पढ़ी नहीं और बुला रहे हैं, नहीं आएगा वो, कैसे आएगा? वो जो कह रहा है वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं, और जो जो हम बुला रहे हैं बिना पढ़े, अर्थात वो हमारा स्वार्थ है, स्वार्थवश बुलाते हैं हम, उसकी पढ़ाई को तो पढ़ा ही नहीं है, और फिर कह रहे हैं बाबा आ जाओ मदद करो। कैसे मदद होगी? मदद करने के लिए तो सारे टिप्स तो मुरली में दे दिए हैं, उसको पकड़ के हम दूसरा कर देते हैं। बाबा ने कहा, आज तुम्हें अपनी सेवा अपने आप करनी है, निरंकारी बनना है। मम्मा बाबा कितना बच्चों के आगे निरंकारी है, जो विश्व महाराज एवं विश्व महारानी, बच्चों की सेवा में उपस्थित, सीखने वाली बात है ये। तो हमें स्वयं की सेवा, स्वयं की उन्नति करनी है, स्वयं को देखना है, झांकना अंदर से कि मैं अपनी सेवा कितनी ठीक ठाक से कर रहा हूं। सेवा अर्थात एक स्थूल, स्थूल के साथ सूक्ष्म सेवा, अर्थात स्वयं की आत्मा को कितना संपूर्ण पवित्र बना रहा हूं। क्योंकि बाबा का एक ही कर्तव्य है, केवल एक ही कर्तव्य, कौन सा? पतितों को पावन बनाना, विश्व को संपूर्ण पवित्र बनाना, एक ही कर्तव्य केवल है। उस कर्तव्य में हम कितना मददगार हैं, कितना सहायक सहायता कर रहे हैं उसमें, अर्थात स्वयं को पवित्र बनाना सबसे बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा स्वयं को पवित्र, अर्थात अपने संकल्पों पर पूरा नियंत्रण। कल था ना मुरली में वरदान, कंट्रोलिंग पावर, जहां संकल्प, जहां फुल स्टॉप लगाना चाहो वहां लग जाए, ऐसा नहीं लगाना चाहे यहां और लगे जाए आगे जाके, टाइम बीत गया तो शक्ति एनर्जी वेस्ट होगी ना। तो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है, शक्तिशाली कितना स्थिति चाहिए इसके लिए, कितना ध्यान रखने की जरूरत है। ये साधारण तपस्या नहीं है, हम साधारण लोग नहीं है, बहुत ऊंचे लोग हैं, लेकिन साधारणता को हम छोड़ते नहीं है, साधारणता को हमने पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि महानता से प्यार नहीं है, साधारणता से प्यार करके रखा हुआ है। तो अपने ऊपर गहरा निरीक्षण करना है, उसके लिए बताया साइलेंस और पढ़ाई यज्ञ का लिटरेचर। इतना सारा लिटरेचर कहां पढ़ा हमने, और जिसको पढ़ना ना वो थोड़े साल में भी सारा लिटरेचर पढ़ लेते, और कईयों को देखा हमने, और फिर कह रहे हैं जी हमारा मन बुद्धि भटकता है, योग लगता नहीं। योग लगेगा कहां? योग लगाने का हम तरीका जो बाबा ने बताया उसको छोड़कर दूसरे तरीके में कहीं दूसरे रास्तों पर चल रहे हैं, भटक रहे हैं, और ही वातावरण को हम खराब करने पर तुले हुए हैं। वास्तव में असुर कौन है? असुर बाहर नहीं है, हम खुद ही असुर बन जाते हैं। जब हम वातावरण को खराब करने के निमित्त बनते हैं तो हम खुद ही असुर हैं। जब हमारे मुख से ईश्वरीय परिवार के प्रति ऐसा वैसा बोल निकलता, हम उस समय खुद ही असुर हैं। जब हमारे मन में किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प चलता है, अर्थात हम यज्ञ में विघ्न हैं। असुर बाहर थोड़े नहीं, कोई भले इस बाहर से तो शक्लें दिख रही हैं, अंदर से हम क्या क्या चल रहा है, हम आंतरिक जगत को कितना परिवर्तन कर रहे हैं, स्वयं के ऊपर कितनी नजर है। भगवान इतना प्योर है, उसको दिल कैसा चाहिए, प्योर हार्ट चाहिए। बाबा कितने तुम दिल तक तनशीन बनो, अब इस तख्त पर, इस दिल पर स्वयं भगवान को बिठाना है तो कितना प्योर चाहिए। और हमने पहले से पूरा कूड़ा किचड़ा भर के रखा हुआ है, जिसका चयन भगवान ने किया उसके प्रति हम ऐसा वैसा सोच रहे हैं, तो क्या वो भगवान इधर आके बैठेगा? नहीं बैठेगा। इतना अमूल्य हमको जन्म मिला संगम का, केवल एक जन्म, और उसमें भी कदम कदम पर मदद भगवान देने के लिए बैठा हुआ है। कितना अटेंशन देना पड़े। अगर हम अपने ब्राह्मण जीवन का निरीक्षण करें तो कितना हमारा टाइम वेस्ट चला गया होगा। प्रायश्चित करना चाहिए वास्तव में कि जो हमारा टाइम वेस्ट चला जा रहा है। आज बाबा ने कहा ना कि सर्विस पाई पैसे के पीछे सर्विस को छोड़ना कहां की समझदारी है। ये सब खत्म होने वाले, भस्म होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारा टाइम कहां जा रहा है? छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जिनकी आवश्यकता नहीं है। प्राथमिकता किसको देनी है? बाबा हमको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, भगवान उवाच है वो, लेकिन फिर भी हम शायद भगवान की मत को सेकंड नंबर देते हैं। प्रथम अपनी मन को देते हैं, अपनी मत को ही देते हैं। और अब उस मत के कारण क्या होता है? टेंशन, एक अज्ञात सा अंदर में डिप्रेशन सा बना रहता है, उदासी बनी रहती है, खुशी नहीं है, रौनक नहीं है वो। तो उसका उत्तरदायी हम दूसरों को नहीं ठहरा सकते, हम खुद ही उसके उत्तरदायी हैं। भले जिस संबंध संपर्क में हम आते हैं, कई प्रकार की वातावरण, कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को सामना करने के लिए बाबा ने हम सबको रास्ते बताए हुए हैं, कैसे उनका सामना करना है, कैसे उनमें अपने आप को शक्तिशाली बना के रखना है। क्योंकि अंत में अकेले जाना, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। एक दूसरे से हम सीख रहे हैं, लेकिन जाना अपने को अकेले ही है। इसलिए कल था ना काशी कलवट खाना, अर्थात अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद नहीं, यह है काशी कलवट खाना। बाबा ने कहा था ना, उसका उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया काशी वाला है, तो कितना उस पर रहते हैं एक्यूरेट, उस स्मृति में रखेंगे पॉइंट। इसलिए मुरली तो हमारा श्वास है, भोजन है। बाबा ने कहा ना, ख्याल करो आज की मुरली में, ख्याल करो तुमको कौन मिला है, तुम्हारे सन्मुख कौन है। तुम्हें नशा होनी चाहिए, रूहानी नशा होना चाहिए, तुम्हें निरंकारी बनना है। तो जब भी हम बैठते ना, मन बुद्धि अगर इधर जा रहा ना, कुछ मुरली के पॉइंट सोचो आप। चिंतन करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि हमको विशेष एक ले लिया और उसी पर लंबा, वो भी हो जाएगा एक दिन, लेकिन पहले कम से कम मुरली के पॉइंट तो हम याद करें। मुरली के पॉइंट याद करते करते ऐसे महसूस होगा जैसे भगवान हमको स्पर्श कर रहा है, बाबा की लाइट हमको जैसे स्पर्श कर रही है। क्योंकि ये जो मुरली के शब्द हैं, कोई भगवान किसी मनुष्य के मुख से नहीं निकले हुए, वो शिव भगवान उवाच है। वो जहां से वो शब्द आए हैं उस दुनिया में हमको जरूर ले जाएंगे वो। जैसे हमको अगर कोई रास्ते में मिलता है, वहां हम बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं और उस स्थान पर कुछ समय बैठते हैं, तो जब हमको किसी समय वो याद आती हैं वो बातें, तो कहां ले जाती हैं? उसी स्थान पर ले जाती हैं। तो सोचना है मुरली के समय जो हमने सुना, योग में बैठे भी सोचो, भले जब भी हम बैठे हैं तो सोचो बाबा ने आज क्या कहा। नहीं तो अगर योग में बैठे भी अगर हमारे ऐसे वैसे संकल्प चलते हैं तो वातावरण भारी होता है और वो भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाता है। आज बाबा ने कहा ना, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। इसमें भी क्या होता है, सूक्ष्म हिसाब किताब खाता बनता जाता है। अगर मान लीजिए मैंने कोई गलती कर दी और मुझसे 10 लोगों ने सीख लिया वो गलती, उसका खाता कहां गया? उन लोगों के ऊपर नहीं जाएगा, वो सीधा 10 गुना बोझ हमारे ऊपर आएगा। इसी तरह से अगर हम यज्ञ में हैं, सेवा कर रहे हैं या कहीं भी हैं, अगर हमारे मुख से ऐसा बोल निकल गया किसी के लिए और 50 लोगों ने सुन लिया, उन लोगों के मन में उसके प्रति बहुत ऊंची इमेज है और वो खराब करने की कोशिश की गई। खाता कहां किसके ऊपर गया, 50 गुना बोझ उसके मन के ऊपर ही, और वो उसको तड़फाएगा, नींद नहीं आएगी उसको, बेचैनी होगी क्योंकि भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का हमको मौका मिला, चांस मिला है, कितना श्रेष्ठ जीवन है, महान जीवन है ये। देवताओं का जीवन सचमुच इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो तो बाबा ठीक है हमको खुश करते, स्वर्ग में जाएंगे, विश्व की भाषाएं मिलेगी, वो प्रलोभन तो ठीक है, उस प्रलोभन के पीछे ब्राह्मण जन्म का एक इतनी बड़ी प्रलब्ध प्राप्ति है वो तो बिल्कुल फीकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस संसार के प्रलोभनों में अपने मन को बांध के रखा हुआ है, वही प्रलोभन हमको खींच रहे हैं, वही खींच रहे हैं, उसी में हमारी सारी एनर्जी, उनको संग्रह करने में, उनको यूज करने में हमारी एनर्जी जाती जा रही। भावने का साधनों को यूज करो, लेकिन साधनों को यूज करते साधना कहीं लोप ना हो जाए, तो जांच करनी है अपनी, क्योंकि दिन प्रतिदिन माहौल तो हम देखते जा रहे हैं कैसा बनता जा रहा है। तो बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बात करते होंगे ना सभी आप, तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, करते कि साइलेंस में रहते, कैसे करते हैं आप बताओ माता जी। हाँ बाबा आप आनंद के सागर हो, हाँ हाँ, तो कैसे बात करनी है, जैसे पत्थर लिखते हैं ना, पत्थर लिखना बाबा को, ओह बाबा आपने मेरा जीवन कितना ऊंचा बना दिया, कितना महान बना दिया, कितना आपका मेरे ऊपर इतना उपकार है कि कम से कम आपका ज्ञान मेरी बुद्धि में बैठा है, मेरी बुद्धि को कितना आपने स्वच्छ बना दिया, कितना आंखों में पवित्रता भर दी, कितना बोल में शक्ति भर दी, जीवन में कितनी रूहानियत भर दी है, मेरे विचारों को कितना शुद्ध कर दिया है, मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ बना दिया, पवित्र बना दिया, ईश्वरीय कुटुंब का बना दिया आपने, ओह बाबा आपका कितना कमाल है, कितना धन्यवाद करें, तो प्यार बरसेगा ऐसे। साइलेंस में नहीं बैठना योग, अंदर ही अंदर भगवान से बातें करनी है। योग माना क्या है, आपस में दो व्यक्ति मिलते हैं तो बातें करेंगे ना कि खाली चुप्पी बैठे रहेंगे, तो बाबा से बातें करना ही योग है। ओहो बाबा आपने आज की मुरली में मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे निरहंकारी बनना है, अपनी सेवा मुझे अपने आप करनी है, दूसरों के लिए मुझे प्रेरणा स्रोत बनना है, नम्र चित बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, आपने इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ा के मेरी आंखें खोल दी हैं, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दिया है, जीवन को कितना खुशियों से भरपूर कर दिया है, जीवन में रूहानियत भर दी है, इतना अच्छा ऊंचा परिवार दे दिया, श्रेष्ठ परिवार दे दिया, है ना। तो बाबा से बातें करनी है, वार्तालाप, भगवान से वार्तालाप, और वार्तालाप करते 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 बाबा की बातें बुद्धि में बैठना शुरू हो जाएंगी। बाबा ने कहा ना तुम मेरी राय पर चलेंगे तो फिर शक्ति मिलती जाएगी, तो ज्ञान शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा। तो याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है, याद अर्थात बाबा को जब हम याद करते हैं तो उससे बातें करनी है, और जितना याद शक्तिशाली होगी तो सेवा करने के लिए उमंग सा अपने आप का बना रहेगा। बिना याद के हम सेवा में जाते हैं ना तो उसका कम जमा होता है, सेवा करते हुए भी याद रहेगी तो उसका डबल जमा होगा। तो याद और सेवा ये डबल लॉक लगाना है, नहीं तो कोई अगर दरवाजा बंद है खिड़की खुली रहेगी तो भी क्या आएगा, धूल मिट्टी आती रहेगी ना। तो इन आंखों से इन कानों से किसी ने कुछ बोला और हमने कान खुले रखे हैं तो सीधा अंदर चलेगा, सुनाई तो देगा ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान के मावा क्यों अगर हमने पहले भर के रखा हो तो वो बातें हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी। अगर इन दृष्टि इन आंखों को सवेरे ही भगवान की दृष्टि से भरपूर कर लिया तुम्हारी दृष्टि चंचल होगी नहीं, दिखाई तो देंगे सभी लेकिन दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होगी, तुरंत संकल्प कंट्रोल हो जाएंगे। और ये बड़ी साधना है, सबसे धोखे बाबा के इतना आंखें हैं, इन आंखों पर नियंत्रण रखना ये कितनी बड़ी साधना है। सब अपने लगेंगे, अपने परिवार के लिए, लौकिक में जो अपना परिवार होता है तो अपने परिवार के प्रति ऐसी दृष्टि वृत्ति रहती है कहीं, तो ये तो अलौकिक परिवार है तो कैसे रहेगी फिर। लेकिन अलौकिकता को हमने समझा नहीं है, अलौकिक ज्ञान को हमने बुद्धि में बिठाया नहीं है, इसलिए दृष्टिवृत्ति खराब होती है। उस दृष्टि में भगवान के प्यार को भगवान की शक्ति को भरा नहीं है सवेरे सवेरे। बाबा ने कहा ना सवेरे सवेरे बैठ जाओ, चित्रों के आगे बैठो, सोचो, उनको देखो, बाबा की आंखों में आंखें डाल के देखो, देखते रहो उसमें सवेरे सवेरे आके। सोचो जैसे पूरी एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, भगवान की सारी शक्ति मेरे में आ रही है। वो तो सवेरे खोले खजाने, बाबा कहते मैं खोल के बैठा हूं, भरपूर खजाने हैं, कोई ताला चाबी नहीं है, जो जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन हम क्या ले रहे हैं उस समय। तो ये जो हमको एक ये जो शरीर मिला हुआ है, ये जो कर्मेंद्रियां जो आत्मा का परिवार है, इसको हमको बड़े प्यार से चलाना है, क्योंकि हमको बहुत कमाई जमा करनी है, विश्व का कल्याण करना है, स्वयं के कल्याण के साथ साथ विश्व का कल्याण करना है। तो सो पुरुषार्थ करना अर्थात स्वयं के बारे में चिंतन करना है। स्वयं के बारे में अच्छा चिंतन करेंगे, हमारी अच्छी प्रोग्रेस होती रहेगी, तो दूसरों के भी प्रति हमारे कल्याणकारी संकल्प पैदा होंगे, शुभ भावना शुभ कामना वाले, नहीं तो नहीं होंगे। आज के वरदान में था ना, जो संपन्न और भरपूर होंगे वही संतुष्ट होंगे और वही तृप्त होंगे, और जो तृप्त आत्माएं हैं वो कैसी भी परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों में भी दूसरों को सहयोग देने के लिए उनके अंदर रहम दिल होंगे, रहम की भावना होगी, शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगी, विश्व कल्याण की भावना होगी। यही राहिल आत्मा का लक्षण है। तो धीरे धीरे धीरे, और ये लंबी यात्रा है, एक दिन की यात्रा नहीं है, ऐसा नहीं है एक घंटा योग दो घंटा, हमारा जीवन योगी जीवन है। ये ठीक है हमको जो योग के लिए टाइम निर्धारित किया गया, टाइम टेबल जो भी हमारी दिनचर्या बनी है जिस पर हमको चलना है, वो तो बहुत जरूरी चलना है, लेकिन हमारा जीवन निरंतर योगी जीवन है, निरंतर योगी निरंतर सेवादारी। 24 आवर हमारे से एनर्जी फ्लो होती रहती है, वो एनर्जी जो हम संकल्प करते हैं, जिन संकल्पों से के साथ हम विचरण करते हैं, जहां से भी जा रहे हैं, अगर हम तनाव वाले संकल्पों के साथ जा रहे हैं तो हम अर्थात तनाव का वायुमंडल बनाते हुए जा रहे हैं, अगर हम खुशी वाले संकल्पों के साथ जा रहे हैं तो अर्थात खुशी की लहरें फैलाते जा रहे हैं, अगर हम पवित्र संकल्पों के वाइब्रेशन के साथ चल रहे हैं कहीं तो हमारे आसपास पवित्रता का वाइब्रेशन फैलता जा रहा है सारा। एक एक संकल्प हमारा विश्व को प्रभावित करता है, क्योंकि हम बीज रूप बाप से जुड़े हुए हैं, बीज रूप बाप के बच्चे हैं। तो जैसे उस सूर्य के बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे उस सूर्य की रोशनी पूरे संसार पर पड़ती है, हम आत्माएं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, तो आत्माओं की किरणें भी पूरे संसार को रोशन करती हैं, अर्थात हमारा हर एक संकल्प पूरे संसार को प्रभावित कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने संकल्पों को उतना महत्व नहीं देते हैं, उनमें ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, उनमें प्योरिटी नहीं है, पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, इसलिए वातावरण फिर भारी भारी रहता है, जीवन में भारी भारी रहेगा, चिंतन नहीं चलेगा, खुशी नहीं रहेगी। भगवान का मिलने के बाद भी अगर हमारी खुशी नहीं है तो क्या कहेंगे इसको। लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा, मेहनत है, आज बाबा ने कहा ना मेहनत है, दे अभिमान में तो बहुत जिए, अभी देह ही मानने में मेहनत लगती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करो। आज की मूल्य में बिना मेहनत के नहीं हुए, लेकिन इस मेहनत में सुख बहुत समाया हुआ है, इस मेहनत में अतिंद्रिय सुख है। संगम पर हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, इस पुरुषार्थ में बहुत अतिंद्रिय सुख समाया हुआ है, वो प्रारब्ध इस पुरुषार्थ से भी कम है, इस पुरुषार्थ में बड़ा सुख है, क्योंकि हम भगवान की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, जो वो कह के जाता है हम पूरे मनोयोग से अगर करते हैं तो जो खुशी मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, एहसास होगा, उसका एक अलग ही नशा रहता है, और वो नशा फिर पूरा दिन कायम रहता है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, कोई भी एक पॉइंट लो, अगर हम खाली आत्मा समझने का ही पुरुषार्थ करें, ये भी बहुत बड़ी साधना है। कोई भी एक पॉइंट ले लें, बस उसी पर स्थित हो जाओ, बस अपने आप को केवल देखते रखे, मैं यहां बैठा हूं, बस यहां से अभी मुझे आधा घंटा उतरना नहीं है, अपने आप को देखते रहो, बस मैं मणि यहां चमक रही हूं, और धीरे 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 उसकी एहसास उसका महसूसता होगी, तो धीरे धीरे महसूस होगा ये स्मृति हमको दिलाई किसने है, वो जो सुख जिससे सुख मिलता वो स्वतः याद आता है, फिर याद करना नहीं पड़ता उसको, वो स्वतः याद आएगी, जो मणियों का मालिक है वो स्वतः याद आएगा, महसूस होगा वो कि वो मेरे अंग संगी है, जो कहते ना तुम तो यही कहीं बाबा मेरे अंग संग हो, तो महसूस होगा वो। तो पुरुषार्थ में कुछ नवीनता करनी है, अपने आप को पढ़ाना रोज, सेल्फ स्टडी करनी है, दूसरों को पढ़ाना बहुत आसान है लेकिन स्वयं को पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए स्वयं को पढ़ाना रोज, जो बाबा पढ़ाते हैं वो देखना मैं उसको अपने जीवन में कितना ला रहा हूं,
कितना वो हमको याद रह रहा है, उस पर थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, लिखना, बार बार याद करना, सोचना मीठे बच्चे क्या बोला बाबा ने, आज प्रश्न उत्तर क्या बोला, कल बाबा ने कहा था ड्रामा का अटल नियम है कौन सा। अगर बुद्धि को भटकाना है ना तो मुरलियों में भटकाओ, कल क्या बोला था ड्रामा का अटल नियम है कौन सा, दो बातें बताई थी, कौन सी बात कर रहे। हाँ, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं है, और दूसरा जब पतित आत्मा है तो पावन आत्मा नहीं है, जब पावन आत्मा है तो पतित आत्मा नहीं है। तो मन बुद्धि को उन मुरलियों में लेके जाना है, याद और सेवा का डबल लॉक। सोचो और कहीं कौन से मुरली में सुना हुआ। तो एक मुरली में बाबा ने कहा याद के बारे में, जब तुम बच्चे याद करते हो तो अपने में जैसे शक्ति भरते हो, गुण भरते हो, और उन गुणों और शक्तियों के भरने से क्या होगा, जीवन एक गुलदस्ता की तरह बन जाएगा, शक्तिशाली जीवन हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, व्यर्थ से बच जाएंगे, एनर्जी जमा होगी, शक्ति जमा होगी। तो अपने मन को ज्ञान में भटकाना है, ज्ञान सागर है उसमें डुबो के रखना उसको, तो हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, और व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर खुशी होगी। फिर खुशी हमारी नष्ट कहां होती है, जब हम व्यर्थ में चले जाते हैं। जाना तो वैसे कोई नहीं चाहता, जाता कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता जाना, लेकिन चले क्यों जाते हैं, क्योंकि आत्मा कमजोर है, अभी भी शक्ति भरी नहीं है उसमें। जो माजून हमको डेली मिलता है, इतनी शक्तिशाली खुराक मिलती है, मुरली मिलती है, उसको पढ़ना, बार बार पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, धीरे धीरे कुछ तो बुद्धि में बैठेगा। वो नहीं पढ़ना है ब्रह्मा के जीवन कहानी पढ़ो, दादियों के अनुभव पढ़ो, वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस सुनो, किताब भी इतना सारा लिटरेचर है वो पढ़ो, बाबा को पत्र लिखो, मुरली से अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल के लिखो, उस पर चलो मोबाइल से आते हैं मोबाइल में अलग से निकाल के लिख लो, उसमें उसको रिवाइज करो, आपस में चर्चा करो। कितने सारे सोर्स हैं हमारी उन्नति के, अनेकों सोर्स हैं। तो हमको कोई ना कोई साधन अपनी उन्नति के लिए ढूंढने हैं, ताकि हमारी साधना में दिन प्रतिदिन निखार आता रहे, हमारी साइलेंस पावर बढ़ती जाए। वो जो सुख है अतीन्द्रिय सुख, जो बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा सुख है, वो देवताओं को भी नहीं है, उसका हमको अनुभव करना है। तो वो केवल अभी अनुभव कर सकते हैं संगम पर ही। अभी तो परसों बाबा का मिलन भी है, कल दादी जी का दिन भी है, अव्यक्त लोक है ना, तो उन दादियों का चरित्र पढ़े, उनकी त्याग तपस्या कितनी बड़ी है, कितना भगवान आकर हमारी पालना कर रहे हैं। तो बाबा के मिलन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, जो भी बाबा सुना के जाते हैं कुछ एक पॉइंट लिखकर उस पर पुरुषार्थ करना है। क्या क्या है बाबा ने कहा उस दिन संडे में, बाबा ने कहा ना, तुम बच्चे समीप हो, आत्मा हो, समान आत्मा हो, संपन्न आत्मा हो, तो कुछ ना कुछ बुद्धि में अगर हम याद करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, दिन दिन प्रतिदिन हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे, परिवार में परिवार के प्रति अपनापन आएगा, प्यार लगेगा। नहीं तो अपने आप से प्यार नहीं है तो परिवार से भी प्यार नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, तो क्या करना है, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। अब इसमें ऐसा नहीं हम ज्यादा बाचा में आए बोले, जितना टू दी पॉइंट, जितने बोल बोलने चाहिए वही बोले, है ना। जिससे हमारा उन्नति, उस दिन था ना, तुमको टोंट वाले बोल नहीं बोलने हैं, किसी को गिराने वाले नहीं बोलने हैं, कमजोरियों का चिंतन नहीं करना था ना संडे के मुरली में पांच प्रकार के बोल, तुमको कौन से बोल बोलने हैं, सुखदायी बोल, वरदानी बोल होने चाहिए, हमारा जीवन ही वरदानी हो जाना चाहिए। रोज सवेरे उठ के बाबा से वरदान लेने, ढेर सारे वरदान, ये जीवन ही जैसे हमारे संकल्प ही वरदानी हो जाए। बाबा ने कहा संगम पर ब्राह्मण बच्चे जो भी संकल्प होंगे वो पूरा होगा, चाहे वो नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, ये संगम युग को वरदान है। तुमको पहले से ऐसे शक्तिशाली संकल्प अपनी बुद्धि में भर के रखने हैं, बाबा के आगे बैठे हैं, आंखें खोल के रखी हैं, बाबा मुझे निहार रहे हैं और वरदानों की बरसात आ रही है और सारे वरदान मुझ में समाते जा रहे हैं। वो अपने अपने वरदान याद रखने हैं, कौन से हैं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं परमात्मा नयनों का नूर हूं, दिल तक तनशीन हूं, है ना, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, संतुष्ट मणि हूं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूं, और उस पर रुक जाना है। उस दिन बताया ना लाइट और बिंदु, दो बातों पर सारा जीवन आधारित है, संसार भी और हमारा जीवन भी। तो ऐसे बाबा की अनेक सारी बातें हैं, बाबा से दिल से बातें करनी है, भगवान से वार्तालाप बढ़ाना है। जितना हम बाबा से बातें करते रहेंगे तो वो अनुभव होगा साथ में, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कहना नहीं पड़ेगा तुम तो यही अंग संग। वो वास्तव में अभी हमको निरंतर अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ में है, क्योंकि बाबा ने कहा अंत में वही बच्चे उसका अनुभव कर सकेंगे जो लंबे समय से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे, अर्थात साइलेंस में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
मधुर बात।